आर्यांश की तबीयत अब थोड़ी सही हो चुकी थी। वो वर्तिका के घर पर था। जैसे ही आर्यांश को होश आया, वो वर्तिका और श्रेष्ठ से बात कर रहा था। वर्तिका उसे देखकर बहुत परेशान थी और इस बात से नाराज भी कि जब पृथ्वी कपूर ने आर्यांश को घर से निकाला था, वो उसके पास क्यों नहीं आया था। आर्यांश वर्तिका से हमेशा से ही बहुत प्यार करता था, लेकिन पिछली बार जब वो वर्तिका के घर पर सहर को लेकर आया था, तब उसने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया था। आर्यांश को पहले भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो वर्तिका के सामने जाने से बच रहा था। वर्तिका का प्यार और उसकी परवाह देखकर अब आर्यांश को अपने जज्बातों पर काबू नहीं रहा और उसे और भी बुरा लग रहा था। आर्यांश यही चाहता था कि वर्तिका भी उसे उतना ही जोर का तमाचा लगाए ताकि वो भी इस दर्द को महसूस करे। आर्यांश वर्तिका से बड़ा था, वैसे भी वे उसे बहुत प्यार करते थे, तो उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। वर्तिका बार बार उसे मना कर रही थी और इस बीच श्रेष्ठ ने आगे जाकर वर्तिका के बजाय आर्यांश के गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, मानो आर्यांश और वर्तिका दोनों ही इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आह, ये लगता है, आर्यांश ने श्रेष्ठ को घूरते हुए कहा, मैंने इतनी जोर से भी नहीं मारा था। और तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैंने खुद उसके गालों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान देखे थे, जो अगले दिन भी नहीं गए थे। रुको, मुझे तुम्हारा गाल देखने दो। अगर इस पर निशान नहीं हुए तो मैं तुम्हें एक और मारने वाला हूँ। तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा गाल ना सूज जाए, श्रेष्ठ ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा और आर्यांश की तरफ बढ़ने लगा। आर्यांश तुरंत उससे कुछ कदम पीछे हट गया था। श्रेष्ठ आर्यांश को मारने के लिए पीछे दौड़ने लगा, तभी वर्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने श्रेष्ठ को आंखें दिखाते हुए कहा, बस करो, वो पहले से ही परेशान है और बीमार भी, ऊपर से तुम उन्हें मार रहे हो। वो यही डिजर्व करता है। मैं तो कहता हूँ कि दीवा को इसे अच्छा खासा पीट देना चाहिए ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, श्रेष्ठ बोला, जिस पर आर्यांश के कदम वहीं पर रुक गए थे। कौन किसे मार रहा है भाई? दरवाजे पर एक आवाज आई, जिसे सुनकर वे सभी एक पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने उस तरफ देखा तो समीक्षा और मनीष खड़े हुए थे। समीक्षा को आर्यांश के बारे में पता चला तो वो खुद को वर्तिका के पास आने से रोक नहीं पाई और जबरदस्ती मनीष को भी वहां पर ले आई थी। आते ही समीक्षा और मनीष ने आर्यांश की तरफ देखा, जो नजरें झुकाकर खड़ा हुआ था। समीक्षा तुरंत आर्यांश के पास गई और उसके गाल पर हल्की उंगलियों के निशान देखे तो वो हैरानी से श्रेष्ठ और वर्तिका की तरफ देखने लगी। ये तुम्हारे गाल पर निशान कैसे हैं? क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? क्या पापा जी ने ऐसा किया? समीक्षा ने आर्यांश के गाल को सहलाते हुए पूछा। कुछ नहीं, ठीक है मॉम, आर्यांश ने तुरंत समीक्षा का हाथ अपने गाल से अलग कर दिया था। समीक्षा ने श्रेष्ठ और वर्तिका की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वर्तिका ने श्रेष्ठ की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। तुमने आर्यांश पर हाथ उठाया श्रेष्ठ? समीक्षा ने श्रेष्ठ की तरफ देखकर पूछा। हाँ, तो क्या गलत किया उसने? मनीष बीच में पड़ते हुए बोले। ये काम हम दोनों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारी ही गलती है जो हमेशा इसे जिम्मेदार समझते रहे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर डाल दी। पता नहीं था कि इसकी वजह से ये दिन देखना होगा। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस वर्तिका का बदला लिया है। आपको पता भी है कि पिछली बार जब ये यहाँ पर आया था तब इसने वर्तिका को थप्पड़ लगाया था, श्रेष्ठ ने समीक्षा के पास बैठते हुए कहा। वो अच्छे से जानता था कि समीक्षा आर्यांश से कितना भी प्यार करे, लेकिन जब वर्तिका की बात आती थी तो वो वर्तिका का ही पक्ष लेने वाली थी। तब तो तुम्हें इसे एक और लगाना चाहिए था, समीक्षा बोली और वो आर्यांश को छोड़कर वर्तिका के पास चली गई। आर्यांश ने श्रेष्ठ की तरफ घूर कर देखा, मानो आंखों ही आंखों में ले कह रहा था कि क्या उसकी जिंदगी में पहले से ही कम मुसीबतें हैं जो उसने समीक्षा को ये बता दिया कि उसने अपने गुस्से में वर्तिका को थप्पड़ लगाया था। तुम ठीक हो ना? समीक्षा ने वर्तिका से प्यार से पूछा। हाँ मॉम, सब ठीक है और वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वर्तिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। समीक्षा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। एक वक्त ऐसा था जब सच में श्रेष्ठ, वर्तिका और आर्यांश इसी तरह आपस में खेलते और लड़ा करते थे, लेकिन ये उनके बचपन की बात थी। आज उन तीनों को एक साथ एक जगह देखकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर साथ ही सब कुछ कितना उलझा हुआ था ये सोचते ही समीक्षा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? समीक्षा ने बुझी हुई आवाज में कहा। नहीं, अब मुश्किल है, मनीष ने जवाब दिया। तुम आर्यांश को देखना चाहती थी, वो ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर पापा जी को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे के बारे में सोचना होगा। आर्यांश कब तक इस तरह पापा जी के गुस्से के शांत होने का इंतजार करेगा? वो खुद को इस तरह इस घर में बंद करके नहीं रख सकता है, समीक्षा बोली। मेरी फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं अपना अरेंजमेंट कर लूंगा। और डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दादाजी आप दोनों से नाराज हो जाएं, आर्यांश ने समीक्षा को समझाते हुए कहा। आर्यांश के तसल्ली देने के बावजूद समीक्षा के चेहरे पर वही परेशानी के भाव थे। वर्तिका उनके पास आई और उन्हें साइड से हक करते हुए उनके बाजू को सहलाकर बोली, और आपको किस बात की टेंशन है? भाई मेरे घर में पूरे आराम के साथ रह सकते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। नहीं, मैं यहाँ भी नहीं रहने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है मुझे आगे क्या करना है, आर्यांश ने जवाब दिया। उसके कहते ही उन सब ने तुरंत उसके चेहरे की तरफ गंभीर भाव से देखा। उनकी आंखों में अभी भी उसकी परवाह थी। आर्यांश ने सिर हिलाया और हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। बच्चे तो नहीं हो लेकिन बेरोजगार जरूर हो, वो भी इस उम्र में। पता है ना, नेक्स्ट मंथ तुम पूरे 30 साल के हो जाओगे, श्रेष्ठ ने उसे परेशान करते हुए हल्के लहजे में कहा। और मुझे ये बोल भी कौन रहा है जो मेरी ही उम्र का है और अभी तक उसने बिजनेस या किसी भी काम को सीरियसली ज्वाइन नहीं किया है, आर्यांश ने आंखें घुमाकर कहा। मैं दोनों माहौल को कितना भी हल्का करने की कोशिश करें पर समीक्षा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने आर्यांश का हाथ पकड़ा और हल्की भर्राई आवाज में कहा, क्या तुम अब्रॉड जाना चाहते हो? हम तुम्हारे वहाँ जाने का पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। तुम वहाँ कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हारे मामा को कहूँगी कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। पापा जी उन्हें हेल्प करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। सौरभ बजाज का नाम आते ही आर्यांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत नामे सिर हिला दिया था। मनीष ऊपर से कितना भी सख्त दिखने की कोशिश करे लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी आर्यांश की फिक्र थी। उन्होंने सीधे सीधे मदद का प्रस्ताव ना रखते हुए इनडायरेक्टली कहा, वैसे अब्रॉड जाने का आइडिया बुरा नहीं है और मैं कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहा था जिनके लिए काफ़ी रिसर्च और टाइम की ज़रूरत है। तुम फिलहाल कंपनी नहीं संभाल रहे हो तो उन पर रिसर्च कर सकते हो। ये तो वैसे भी घर पर बैठकर करने वाला काम है। मुझे कपूर इंटरनेशनल से जुड़कर नहीं रहना है, प्लीज़ आप लोग समझिए, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, आर्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसे वो उन्हें समझाते हुए थक गया हो। हाँ, अच्छे से पता है तुम खुद को कैसे संभाल सकते हो। 2 दिन तक उस पार्क में पड़े थे जहाँ अक्सर लावारिस और शराबी लोग होते हैं। मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, या तो तुम वर्तिका के साथ इस घर में रहो या फिर अब्रॉड चले जा, समीक्षा गुस्से में तेज आवाज में बोली।
आर्यांश ने समीक्षा को कुछ नहीं कहा और मनीष की तरफ देखा। उसकी आंखें यही कह रही थीं कि वे समीक्षा को यहाँ से लेकर चले जाएं। आर्यांश का इशारा समझते हुए मनीष ने समीक्षा का हाथ पकड़ा और कहा, पापा जी ने कुछ सोच समझकर ही इसे ये सजा दी होगी। देखा जाए तो अपने प्यार और परवाह में तुम ये भूल गई हो कि आर्यांश ने बहुत गलतियां की हैं। कपूर इंटरनेशनल की पोजीशन का गलत फायदा उठाकर दीवा को परेशान किया है और जब दीवा का साथ देने की बारी आई तब उसने सबके सामने दीवा का हाथ छोड़ दिया था। तुम्हें अगर याद हो तो उस पार्टी के बाद से तुम भी आर्यांश से गुस्सा थी। हाँ, मैं भी गुस्सा थी, लेकिन अभी अपनी गलतियों को ठीक कर रहे ना। आर्यांश मानता है उसने गलती की थी, तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? समीक्षा ने नम आंखों के साथ कहा। समीक्षा को समझाना आसान नहीं था और आर्यांश जानता था कि ये मनीष से बिल्कुल नहीं होने वाला। वे हमेशा समीक्षा की हर सही गलत बात मानते थे। यही वजह थी कि आर्यांश से गुस्सा होने के बावजूद समीक्षा के साथ उन्हें वहां आना ही पड़ा। आर्यांश आगे बढ़ा और समीक्षा को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं ये डिसाइड करने का हक दीवा का है। तो ठीक है, फिर दीवा से मिलकर बात करते हैं, मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुम्हें माफ कर दे और साथ ही पापा जी से भी बात करे, समीक्षा बोली, जिस पर आर्यांश ने सख्ती से उनका हाथ पकड़ लिया था। आर्यांश ने तुरंत नामे सिर हिलाया और सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं मॉम, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। जो गलती मैंने की है वो आप लोग क्यों कर रहे हो, और प्लीज़ यहाँ से चले जाइए वरना मैं खुद दादाजी को कॉल करके कहूँगा कि आप लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो और मुझे हेल्प ऑफर कर रहे हो। समीक्षा हैरानी से आर्यांश की तरफ देखने लगी, वो उनकी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मनीष जब यहाँ पर आए थे तब आर्यांश से गुस्सा ज़रूर थे लेकिन अब उसके अंदर थोड़ा ही सही, लेकिन एक बदलाव देखकर उन्हें मन ही मन खुशी हो रही थी। वे नहीं चाहते थे कि समीक्षा के प्यार के आगे आर्यांश घुटने टेक दे और फिर से उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए। मनीष ने आगे आकर समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगे। समीक्षा ने पीछे पलटकर आर्यांश की तरफ देखा और रोते हुए कहा, तुम सोचने में टाइम लो, मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा। आर्यांश ने गहरी सांस ली और अपना चेहरा समीक्षा से दूसरी तरफ कर लिया था ताकि उसे रोते हुए देखकर वो कमज़ोर ना पड़ जाए। समीक्षा मनीष के साथ वहां से जा चुकी थी। वहीं उनके जाते ही श्रेष्ठ ने ताली बजाई और आगे जाकर आर्यांश की पीठ को थपथपाते हुए जोर से मारा। अरे वाह, कोई यहाँ सच में सुधरने की कोशिश कर रहा है, पर यकीन नहीं हो रहा, बताओ क्या प्लान है? श्रेष्ठ ने सीधे सीधे पूछा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आर्यांश ने जवाब दिया। और वो कहाँ? थोड़ी देर पहले तुमने अंकल और आंटी को अब्रॉड जाने से मना कर दिया था, अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? श्रेष्ठ ने हल्के हैरानी भरे लहजे में कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से निकलकर ही मैं खुद को उसके पास जाने से रोक पाऊंगा। मुझे अच्छे से पता है अगर मैं मुंबई में रहा तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा और दीवा के पास पहुँच ही जाऊंगा, उसे हर्ट करने की कोशिश करूंगा, आर्यांश ने भारी आवाज में कहा। आर्यांश ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। ये बोलते हुए उसे अंदर ही अंदर दर्द महसूस हो रहा था। क्या सच में आप पीछे हटने वाले हैं? आप दीवा से प्यार करते हैं भाई, आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? वो कितना भी गुस्सा हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह अचानक आपके छोड़कर जाने पर वो खुश होगी, वर्तिका बोली। मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है और तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। अगर तुम लोग ऐसी ही बातें करते रहे तो शायद फिर से वही आर्यांश कपूर दीवा के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा जो उसे पाने के लिए हर कदम पर एक ट्रैप बिछाने के लिए तैयार रहता था, आर्यांश ने मायूस स्वर में कहा। वो और ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं था, इसीलिए आर्यांश अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर किसी की दस्तक हुई। आर्यांश वहीं पर रुक गया था। इस बार वहां समीक्षा और मनीष नहीं थे, बल्कि प्रियंक खड़ा हुआ था। लगता है मेरे घर को सबने गेस्ट हाउस समझ लिया है, जो हर कोई मुंह उठाकर चला आता है, वर्तिका ने उसे देखकर तंज कसते हुए तेज आवाज में कहा। प्रियंक ने आंखें घुमाई और उसकी बात को अनसुना कर दिया था। वैसे भी इस वक्त वो वर्तिका से नहीं बल्कि आर्यांश से बात करने के लिए आया था। प्रियंक ने आर्यांश की तरफ देखा और सीधे सीधे पूछा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि तुम यही करने वाले हो। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। अचानक तुम्हें उसकी याद आ गई जिसकी तुमने साथ रहते हुए कभी कदर नहीं की। तुम्हारे दादाजी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और सच कहूँ तो अब मैं आराम से कपूर इंटरनेशनल में काम करने के लिए जा सकता हूँ। जब भी वहां तुम्हें देखता था तो मेरा दम घुटने लगता था। ओ हेलो, वर्तिका प्रियंक की तरफ बढ़ते हुए बोली। आर्यांश कोई जवाब नहीं दे रहा था, जबकि उसकी बातें सुनकर वर्तिका को गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, हम भी तुम्हें बचपन से झेल रहे हैं, कभी हमने कहा कि हमारा भी तुम्हारे आसपास दम घुटता है? बीच में टांग अड़ाना बंद करो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों से बात करने का। मैं बस यहाँ शहर को लेने के लिए आया हूँ। मेरी ही गलती थी जो उसे इस आदमी के भरोसे छोड़ दिया, हिपोक्रिट कहीं का, प्रियंक ने गुस्से में जवाब दिया। और उसके कहते ही आर्यांश को शहर की याद आई। आर्यांश को यही याद था कि उसने आखिरी बार शहर को वर्तिका के घर पर छोड़ा था, और अब तो वो उसे कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। जी दोस्तों, आज तो चैप्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो प्लीज सब लोग समीक्षा करके जाना, वरना मुझे यही लगेगा कि आपको कहानी में इंटरेस्ट नहीं रहा है और मेरा लिखने का मन नहीं करेगा। बेचारी शहर की इन लोगों को याद तो आई। वैसे क्या लगता है कि आर्यांश की ये सुधरने की जर्नी कितने दिनों तक टिक पाएगी, वो भी जिस तरह से उसके आसपास वाले उसकी ईगो को बूस्ट करने में लगे हुए हैं।